الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سورة مؤمنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں جو فلاح یاب ہیں. قد افلح المؤمنون, وہ ایمان والے کامیاب ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کامیاب ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اردو کا لفظ عربی کے اس لفظ فلاح کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کرنے سے قاصر ہے. ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو فلاح کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے, تو ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں کامیاب. حالانکہ فلاح کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی حاصل ہو. تو بہرحال وہ اہل ایمان دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خوشحالی حاصل کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون, اور جو لوگ لغو سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو لغو سے بچاتے ہیں. مفسرین نے لغو کے دو معنی بیان کیے ہیں, یہاں مجھے ایک ہی معنی پر کلام کرنا ہے. یہاں لغو سے مراد ایسے کام اور ایسی باتیں جو فضول ہوں, لا یعنی اور بیکار ہوں, یعنی جن کا نہ تو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ اخروی اعتبار سے. آدمی کوئی کام کرتا ہے, کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے, تو اس کو گویا پہلے ہی یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جس کام کو کرنا چاہتا ہوں یا جو بات اپنی زبان سے نکالنا چاہتا ہوں اس میں میری آخرت کا کیا فائدہ ہے. اگر ہے فائدہ تو ٹھیک, یا آخرت کا نہیں تو دنیا کا کیا فائدہ ہے. اگر آخرت اور دنیا میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ فضول اور بیکار کام اور بات ہے, اور گویا اس میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو استعمال کرنا یہ اپنے آپ کو بہت بڑے گھاٹے اور نقصان کے اندر ڈالنا ہے. अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी जो हमें अता फरमाई है, वाकया ये है कि ये बहुत कीमती सरमाया है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवरल्ला मरकदव एक शेर पढ़ा करते थे, तेरा हर सांस नखले मूसवी है, ये मद्दो जज्र जवाहर की लड़ी है। यानी जो सांस हमारा निकल रहा है, गोया शायर यूं कहता है कि ये गोया वो हजरत मूसा अला नबीना वाली सलात वसलाम से अल्लाह तबारक व ताला ने जो कलाम फरमाया था, तो अल्लाह ताला के कलाम की आवाज़ हजरत मूसा अला नबीना वाली सलात वसलाम को जिस दरख्त से सुनाई दी थी, गोया जिस दरख्त को अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम के जहूर का महल बनाया था, वो कितना कीमती होगा। गोया तेरा हर सांस उस दरख्त के मानिंद है जहाँ से हजरत मूसा अला नबीना वाली सलात वसलाम को अल्लाह तबारक ताला के कलाम की आवाज़ सुनाई दी थी। ये मद्दो जज्र जवाहर की लड़ी है, ये सांस ऊपर नीचे जो होती है, हकीकत तो यह है कि ये जवाहरात की एक लड़ी है। तो ये बहुत कीमती चीज़ है। हमारे हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार बड़े लुत्फ के साथ अपनी मजलिस में अकबर इलाहाबादी का ये शेर पढ़ा करते थे, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। के ये घंटे वाली जो घड़ी होती है टिकोरे वाली, उसमें जब एक या कोई भी एक घंटा जब पूरा होता है, दो पूरे होते हैं तो दो गोया घंटे बजते हैं, तो गोया ये घड़ियाल की आवाज़ तुमको ये खबर दे रही है कि तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे हाथ से निकल गया। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह वलासरा की तफसीर में अरबी का एक शेर नकल किया है कि हयातु का अनफासुन तुअद्दु फकुल्लमा मजा मिन्हा नफसुन इंतकस्त बिही जुजा, के तुम्हारी ये जिंदगी क्या है, चंद सांसों का मजमुआ है। कुल्लमा मजा मिन्हा नफसुन, जहाँ एक सांस तुम्हारे हाथ से निकला, एक सांस गुजरा, वह इंतकस्त भी जुजा, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा गोया कम हो गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा वजूद जो है ना, गोया वो चंद सांसों का मजमुआ है, जो वक्त गुजर रहा है तुम्हारे वजूद को उतना कम करता जा रहा है। इसीलिए उनका मकूला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ज़ोहद व रकाइक के अंदर नकल किया है, अदरक तो अक्वामन कान अहद अहद हूँ अशह अला उमरी ही मिन हो अला दनानी रही व दराहिम ही, मैंने ऐसे लोगों को पाया, चूंकि ताबी थे हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की सोहबत उन्होंने पाई थी, वह मैंने ऐसे लोगों की सोहबत पाई है जो अपनी जिंदगी के औकात के मामले में अपने दराहिम और दनानी से भी ज्यादा बखील थे। एक आदमी के पास अगर दौलत हो तो वो संभाल संभाल कर और बड़ी एहतियात से उसको इस्तेमाल करता है, तो गोया वो अपनी जिंदगी के इन औकात को जो हकीकत में दराहिम और दनानी से भी ज्यादा कीमती हैं, उनके इस्तेमाल के मामले में गोया दराहिम और दनानी के इस्तेमाल के अंदर आदमी जितना बुखल से काम लेता है उससे ज्यादा बुखल से काम लेते थे बहुत एहतियात से। आमिर इब्ने कैस एक ताबी है, बड़े जाहिद और आबिद, कोई जब उनके साथ बात करने का इरादा करता तो कहते सूरज की रफ्तार को रोक लो फिर मेरे साथ बात करो, गोया तुम बात करोगे तो मेरी जिंदगी का वक्त तो इसमें लगेगा, तुम क्या सूरज की रफ्तार को रोक करके उस वक्त को बचा सकते हो, तब मेरे साथ बात करो, तब मैं तैयार हूं बात करने के लिए। तो हकीकत तो यह है कि ये वो हजरात थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के औकात को बहुत संभल संभल करके एहतियात के साथ इस्तेमाल किया। ये जिंदगी जो है अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाई है, बहुत बड़ा कीमती सरमाया। यूं समझिए कि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें अता फरमाई हैं, उन सारी नेमतों से फायदा उठाने की बुनियाद और मदार ये जिंदगी है, जिंदगी है तो हम दूसरी नेमतों से भी फायदा उठा सकते हैं, और अगर जिंदगी नहीं है तो कोई नेमत हमारे काम की नहीं है। तो गोया सब की बुनियाद जो है वो जिंदगी है। अल्लाह ने जिंदगी के जो औकात अता फरमाए हैं ये बड़े कीमती हैं, जरूरत है कि उनको हम ऐसे कामों में इस्तेमाल करें जो हमारे लिए आखिरत के एतबार से या दुनिया के एतबार से मुफीद और कारामद हों। जो आदमी अपनी जिंदगी के इन औकात को ऐसी चीजों में लगाता है, ऐसी बातों में, ऐसे कामों में कि जिससे न तो दुनिया का कोई फायदा हो न आखिरत का, तो यूं समझियो कि वह आदमी अपनी जिंदगी की कोई कदर व कीमत समझता नहीं, उसकी निगाहों में वह उसकी जिंदगी बेकीमत है। हम दुनिया के ताजिरों को देखते हैं और दुनियादारों को देखते हैं कि उनके काम के औकात में कोई बड़े से बड़ा आदमी भी अगर उनके पास पहुंच जाए तो जो है वो उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। हमें तो यहाँ हिंदुस्तान में गोया ऐसे लोगों से कम वास्ता पड़ता है। जो लोग बाहर जाते हैं उनको मालूम है कि वो बड़े से बड़ा मेहमान भी आया हो तो उनको वक्त दे, वो उनके घर में सारा ये बता देंगे ये है, आप ये कीजिए, मैं तो जा रहा हूँ। गोया उसके पास वक्त नहीं है आपको वक्त देने के लिए। तो बहरहाल जिंदगी के औकात को जिस तरह जो है बचा बचा करके इस्तेमाल करते हैं, जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के औकात को आखिरत के लिए उसी तरह इस्तेमाल करने का एहतमाम करें। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने पढ़ा होगा सुनन अबू दाऊद के मुकदमे में कि यहाँ जो असातिदा इसकी तफसील बयान करते हैं वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें हासिल की और उनमें से चुनकर इंतखाब करके 4,800 हदीसें अपनी इस किताब सुनने अबू दाऊद के अंदर वह तरतीब से पेश की हैं उम्मत के सामने, और तमाम जखीरे हदीस का खुलासा फरमाते हैं यकफिल इंसान लेदीनी ही मिनहा अरबात व अहादीस। एक आदमी की दीनदारी के लिए इस पूरे जखीरे हदीस में से 4 हदीसें काफी हैं। उन 4 में से एक ये भी है, कौन सी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैंने नकल किया कि मिन हुस्न इस्लामिल मरे तरकुहू मारा, यानी कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि लायानी यानी ऐसे काम और ऐसी बातें जो दीन या दुनियावी एतबार से उसके हक में मुफीद और कारामद न हो उसको छोड़ दे, उसमें अपने आप को मशगूल न करे, उससे अपने आप को बचाए एहतमाम के साथ। जो लोग अपनी जिंदगी के इन कीमती अवकात को इस तरह की चीजों में, आज हमारा मिजाज क्या बन गया, फजूल बहसें, अखबार सियासी बहसें करेंगे और उस पर तफसरे चल रहे हैं घंटों, उसमें खुलासा क्या है उसका, कुछ भी नहीं है। ये खेल कूद, ये क्रिकेट, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारे तलबा बहुत से अहले इल्म भी जो है अपनी जिंदगी के कीमती अवकात को इन गुनाहों के कामों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी साथ दिलचस्पी, उसके साथ जो है मशगूलियत, और गोया इतना ज्यादा ताल्लुक यानी उसकी मशगूली के नतीजे में इस क्रिकेट के खेल से ताल्लुक रखने वाले जो खिलाड़ी हैं जिनकी बड़ी तादाद तो कुफार की है और उनमें चंद जो मुसलमान हैं उनमें भी बड़ी तादाद फुस्साक और फुज्जार की है। तो गोया उनके उन अब बार बार जब उनका तस्करा करेगा आदमी और उसके अंदर मशगूल होगा तो उसका कुदरती नतीजा ये होगा कि उनकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाएगी। आप आज क्या है, आज हमारा हर नौजवान गोया इन खिलाड़ियों की नकल उतारने को अपनी सआदत और अपना गोया मुंतहाए मेराज समझता है। उसी जैसी चाल, उसी जैसी रफ्तार, उसी जैसी गुफ्तार, गोया हर चीज में उसकी नकल को यूं समझता है कि मैं ऐसा करके बहुत बड़ा गोया अपने लिए कामयाबी का मकाम हासिल कर रहा हूँ 24 घंटे। और ये उसके नतीजे में एक खेल के साथ वो मशगूली के बस यूं समझिए, या बहुत से तो वो हैं जो नमाजें उसकी वजह से कजा कर देते हैं, बहुत से वो हैं कि जो जमात छोड़ देते हैं और जुमा तक के ऊपर उसका असर पड़ता है, और जो पढ़ते भी हैं वे ऐसी हालत में कि नमाज पढ़ रहे हैं और दिल में यही तस्वुरात गोया उनके गर्दिश कर रहे हैं। हालांकि आप किताबों में मसला पढ़ चुके हैं कि अगर किसी को जो है भूख हो, शदीद भूख हो, खाना मौजूद हो, तो उस सूरत के अंदर पहले खाना खा ले, उसके बाद नमाज पढ़े। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा खाना नमाज हो, ये मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मेरी नमाज खाना बन जावे। यानी अगर खाने को छोड़कर नमाज में मशगूल होगा तो भूख की शिद्दत की वजह से पूरी नमाज का अंदर ध्यान क्या होगा, गोया हमारी नमाजें क्या बन गई, इमाम साहब के इस कॉल के बुनियाद पर खेल बन गई कि हम नमाज के दौरान तस्वुर हमारे दिल और दिमाग में काय का होता है, खेल ही का होता है। तो हकीकत तो यह है कि ये शरीयत मुतहरा तो ऐसे तबीयी तकाजे, उनके अंदर उस तबीयी तकाजे की हालत में भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती। नमाज तो एक ऐसा अमल है जो पूरी यकसुई के साथ और पूरी तवज्जुह इल्लाह और इनामत इल्लाह के साथ अंजाम देना चाहिए, लेकिन खेल के साथ इस मशगूली और उसके गोया तस्करों के नतीजे में हमारे दिलो दिमाग 24 घंटे उसमें मशगूल रहते हैं। मर्द क्या, औरतें क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, और हर वक्त इसी में यही, और इसकी वजह से आपस में जो बहसें होती हैं फजूल बहसें। हालांकि अब तो अखबारों ने सारी चीजें खोल करके रख दी कि ये खेलने वाले इनके आपस के अंदर जो मुकाबले होते हैं वो मुकाबले भी खाली नुमाइश दिखलाने के हैं, पहले से तयशुदा होता है कि किसको हारना है और किसको जीतना है। ये सारी दुनिया फिक्सिंग के मसले सारी दुनिया के सामने आ गए, उसके बावजूद इन्हीं फिक्सिंग करने वालों की इस हार जीत पर हम क्या करते हैं, आस्तीनें चढ़ाते हैं। हमारी मदरसे की दरसगाहों में तलबा में झगड़े होते हैं इसकी बुनियाद पर, दो दो फरीक पहले माजी में, उसकी वजह से मदरसों तक को बंद करने की नौबतें आई हैं। अहले इल्म जानते हैं इन वाकयात को। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये वे अपनी जिंदगी के कीमती औकात को, अपनी कीमती सलाहियतों को उसके अंदर क्या करना है, जाया। और खाली जिंदगी ही बर्बाद नहीं होती, एक बात याद रखिए, जिंदगी ही बर्बाद नहीं होती, औकात ही नहीं, औकात के साथ साथ हमारे दिलो दिमाग भी उसमें मशगूल होते हैं, आंखें भी मशगूल होती हैं, कान भी मशगूल होते हैं, जबान भी। यानी गोया अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें हमारे अंदर रखी हुई हैं, जिंदगी के इन कीमती औकात के साथ साथ ये कीमती सलाहियतें और कुवा वो भी इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल होकर के जाया और बर्बाद हो रहे हैं। गोया एक चीज की बर्बादी का रोना नहीं है, सब बहुत कुछ हम गोया बर्बाद कर रहे हैं और हमें उसका एहसास नहीं। बकौल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बावाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हम खो रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, और ये भी हमें एहसास नहीं कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है। ये एहसास न होना उस नुकसान से भी बड़ा नुकसान है। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह ताला किसी गुनाह की वजह से किसी को कोई सजा में मुब्तला करे और उसको ये ख्याल भी ना हो कि मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं मेरे उस गुनाह की सजा के तौर पर है, तो ये एहसास न होना उस सजा से बड़ी सजा है, बड़ी सजा है। तो ऐसे गोया ये एहसास न होना ये उस नुकसान से बड़ा नुकसान है। ये अल्लाह ताला ने कीमती जिंदगी अता फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के जरिए से हमें मुतवज्जे किया कि जिंदगी के इन कीमती औकात को गोया अपने आखिरत की तैयारी में, अल्लाह को राजी करने में, अपनी दुनियावी जरूरतें जो तबीयी जरूरतें हैं या अपनी ऐसी जरूरतें जिसको पूरे किए बगैर आदमी जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसके अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। तो बहरहाल जिंदगी के औकात को इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख्तलिफ इरशादात के जरिए से गोया उम्मत को इसकी तरफ मुतवज्जे फरमाया। हुजूर फरमाते नेमतान मगबून फीहिमा कसीरुन मिनन्नास अस्सेहत वल फराग, अल्लाह ताला की दो नेमतें ऐसी हैं कि उन नेमतों से फायदा उठाने के मामले में लोग घाटे में हैं, या उन नेमतों की कदर कीमत को वसूल करने के मामले में जो है लोग धोखे में हैं। मकबन का लफ्ज जो है ना दो माने में आता है, घाटे के माने में भी आता है, नुकसान के माने में, और धोखे के माने में। धोखा वही माना कि नफ्स और शैतान जो है हमें यूं सुझाते हैं कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवानी है, जरा कुछ ऐशो इशरत से वक्त गुजार लो, बाद में देखी जाएगी। अभी तो तालिबे इल्मी का जमाना है, पढ़ते हो, देखो अभी जरा घूम फिर लो, खेल कूद लो, बाद में देखा जाएगा। ये धोखा नफ्स और शैतान का दिया हुआ, या ये है कि इन औकात के जरिए से जो हमें कुछ हासिल करना चाहिए, जितनी दौलत और उसकी जितनी कीमत हमें वसूल करनी चाहिए वो करते नहीं है, इस माना करके ये घाटे में है। एक आदमी के पास कोई चीज हो, मुतकव्वम बाकीमत चीज, उसकी जितनी मालियत है, अगर उस चीज के जरिए से उतना ही माल वो हासिल करता है तो यूं कहा जाएगा कि न घाटा है न नफा है। और उससे ज्यादा अगर मालियत हासिल, 100 रुपये की घड़ी को अगर 1000 में बेचता है तो यूं कहेंगे कि नफा कमाया, और अगर 50 में बेचेगा तो घाटा हुआ। तो हम गोया जिंदगी की या औकात, उसकी जो कीमत है, अगर हम गोया ऐसे अमाल करके उससे फायदा उठा लें, वसूल कर लें, तो यूं समझा जाएगा कि गोया हम नफे में है वरना नुकसान के अंदर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये तंदुरुस्ती है हर हर तालिब इल्म, आज हमारे तलबा जिंदगी के जिस मरहले से गुजर रहे हैं जवानी के, उसमें उनको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती भी अता फरमाई है, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इनको यहाँ फुर्सत भी दी है, इसी काम के लिए यहाँ मशगूल हैं। वहाँ ना आपको फिक्र है कि आप बीवी बच्चों के खर्चे के लिए कोई कमाएं या कोई कारोबार करें, नहीं, आपको अल्लाह ताला ने फारिग कर रखा है। तो ये फरागत, फुर्सत और तंदुरुस्ती, ये नेमतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और इसी तरह दूसरी रिवायत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ही की है, इख्तनिम खमसन कबल खमसी, उसमें भी नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अपनी उम्मत के साथ वो था जो एक बाप का अपनी औलाद के साथ होता है, बल्कि उससे भी बढ़कर। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, यानी एक मोमिन अपनी जात की इतनी खैरखाई नहीं कर सकता जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खैरखाई की। मिश्कात में आपने रिवायत पढ़ी होगी, लैस मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल जन्नति व युबाइदुकुम अन्नार इल्ला कद अमरतुकुम बिही, हर वो चीज जो तुमको जन्नत से करीब करने वाली और जहन्नम से दूर करने वाली है मैं उसका तुमको हुक्म दे चुका हूँ। वलैस मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल नार व युबाइदुकुम अन्नल जन्नति इल्ला कद नहैतुकुम अन्हु, और हर वो चीज जो तुमको जहन्नम से करीब करने वाली और जन्नत से दूर करने वाली है उससे मैं तुमको मना कर चुका हूं। तो अब जब कोई आदमी काम करे तो उसको देख ले, क्या ये वो काम है जिसका हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तो करो, या वो काम है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है तो अपने आप को उससे बचिए, बचाइए, और जिंदगी के इन कीमती औकात को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में, ऐसे कामों में जिससे अल्लाह ताला राजी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अतवलुकुम आमालन आमारन अहसनुकुम आमाला, यानी तुम में जो ज्यादा हुआ अच्छे आमाल वाले और तवील जिंदगी वाले हैं वो खियारुकुम, तुम में बेहतर वो हैं जिनकी उम्रें तवील हैं और आमाल अच्छे हैं। खैरुन्नास मन ताल उम्रहु व हसन अमलहु, हुजूर फरमाते हैं कि बेहतरीन है वो आदमी लोगों में जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल अच्छे हो, और शर्रुन्नास मन ताल उम्रहु व साअ अमलहु, और बदतरीन है वो आदमी जिसको तवील उम्र मिली और उसको बुरे आमाल के अंदर इस्तेमाल कर दिया। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज हमें खोल खोल कर बतला दी, जिंदगी के इन कीमती औकात को फजूल बहसों में, फजूल बातों में इस्तेमाल करने के बजाय जरूरत है कि अपनी आखिरत की तामीर में, गोया अब आप इल्म हासिल करने के लिए आए हैं तो हुसूल इल्म के अंदर अपने आप को मशगूल करने की जरूरत है। आज क्या हो गया, हमने गोया हमारी कामयाबी के जो असबाब हैं उनकी तरफ से अपने आप को जो है हटा लिया, गफलत में मुब्तला हो गए। इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला राजी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला हजरत कारी सिद्दीक साहब बांदवी नवरल्ला उमर कदहू ने गालिबन आदाबुल मुतालिमीन के अंदर नकल किया है, फरमाते हैं वो कि आज लोगों की अजीब हालत है, अपने उयूब से वाकिफ है उसके बावजूद उसी पर कायम रहते हैं, राह रास्त की तरफ लौटना आज हम में से हर एक का हाल ही हो गया। हम में से हर एक तन्हाई में बैठकर सोचे, अपनी कमजोरियां, अपने नकाइस, अपने उयूब उसको मालूम है, फिर भी क्या अपने इन उयूब को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि इन उयूब से अपना पीछा छुड़ावें? बस उसी के ऊपर जमे हुए हैं, उसको छोड़ने के लिए और राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? वो फरमाते इसलिए कि इल्म पर नाश करने लगे, इल्म हासिल करके उसी पर नाश करने लगे और उसी पर फख्र व मुबाहात में मुब्तला हो गए। गोया हमने खाली इल्म के हुसूल को क्या समझा? काफी समझा, उस पर अमल की जरूरत महसूस नहीं की, उससे किसी किस्म का फायदा उठाना नहीं चाहते। जाहिरी बहसों के अंदर जाहिरी गोया किलो काल में मशगूल रहते हैं और बातिनी और कल्बी अमराज की बहस नहीं करते। क्या हुआ उसका नतीजा? वो फरमाते उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको राह रास्त से अंधा कर दिया और उनके आज़ा को आमाले सालेहा की बजावरी से रोक दिया। आज जो हम आमाले सालेहा नहीं कर पाते वो इसी बीमारी की वजह से। जरूरत है कि हमें चाहिए कि अपने बातिनी अमराज से बहस करें, उसके मुतालिक मालूम करें और उससे अपने आप को बचाने और दूर करने की कोशिश करें। असलाफ अपनी ज़िंदगी के अवकात को जो है कीमती बनाने के लिए कैसी कैसी तदबीरें करते थे, आप और हम किताबों में पढ़ते हैं, जानते हैं। अली जुर्जानी रहमतुल्लाह अली के मुतालिक हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली ने नकल किया है फ़ज़ाइल सदक़ात में भी और गालिबन फ़ज़ाइल ज़िक्र में भी, कि वो बजाय खाना रोटी खाने के सत्तू फाँक लेते थे। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो किसी ने उन्होंने जवाब में कहा कि रोटी खाने में वक्त लगता है, तोड़ो चबाओ ये करो, और सत्तू फाँक लिया तो कम वक्त में ज़रूरत पूरी हो जाती है। मकसद तो जो है अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना है। मैंने हिसाब लगाया कि 70 मरतबा में सुभान अल्लाह पढ़ सकता हूँ उसकी वजह से, तो गोया उस मैंने रोटी खाना छोड़ दिया। और उनका ये मामूल 40 साल से था। गोया हम लोग तो दो चार रोज़ अगर बिरयानी ज़रदा खाएं तो भी हमारी तबीयत उसकी वजह से उकताने लगती है और कुछ दशा बनू इसराइल की तरह दाल वगैरह के मुतालबे पर आते हैं। लेकिन जो है वो 40 साल से अपनी ज़िंदगी के अवकात को कीमती बनाने के लिए वसूल करने, तो जो आदमी अपने खाने के अवकात में से कटौती करके कटिंग करके उसको अल्लाह की याद में इस्तेमाल करता हो वो दूसरे अवकात को तो कहाँ ज़ाय करेगा। हज़रत दाऊद ताही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो रोटी को चबा कर खाने के बजाय भिगो कर खाते थे। और किसी ने पूछा ऐसा क्यों, क्या चबा कर खाने में वक्त ज़्यादा लगता है, भिगो कर खा लूँगा, तो मकसद तो ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना, जिस्म का जो ग़िज़ाई मुतालबा है वो पूरा हो जाएगा, उतनी ग़िज़ा उससे हासिल हो जाती है। हाँ लज्जत नहीं आएगी लेकिन मेरा वक्त बच जाता है जिसमें मैं कुरान पाक की 70 आयतों की तिलावत कर सकता हूँ, ये उन्होंने फरमाया। अब देखिए हमारा हाल तो यह है कि अगर खा रहे हैं प्लेट में रोटी रखी है और पहले से प्लेट में किसी जगह पर गए का कतरा पानी का था जो हमारी नज़र से गुजरा नहीं और रोटी उस पर रख दी गई थी, तो रोटी का जो हिस्सा पानी के उस कतरे से नरम हो गया जब लुकमे में खाने में आएगा ना तो हमारा मूड खराब हो जाता है ना, लज्जत कम हो गई। और ये पूरी ज़िंदगी इसी तरह पानी में भीगी हुई रोटी सिर्फ इसलिए खाते थे कि जो वक्त बच जाए उसको कुरान की तिलावत में इस्तेमाल करेंगे। ये हजरत थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कदर व कीमत समझी। हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी शेख सलीम राज़ी रहमहुल्लाह दोनों के मुताबिक लिखा है, इब्न हजर अस्क़लानी की तसनीफ़ात तालीफ़ात अहले इल्म जानते हैं कौन सा फ़न है, ख़ास करके हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम फ़नून में तारीफ़ वगैरह में भी उनकी तसनीफ़ात है और बुखारी की शरह तो उनकी ऐसी है कि जिसका कोई जवाब नहीं, हमेशा वह तालीफ़ तसनी में मशगूल होते थे। उस ज़माने में कलम जो इस्तेमाल किया जाता था लकड़ी का, तो गोया सफ़ा दो सफ़ा अगर लिखा तो वो कलम की नोक जो होती थी वो घिस जाती थी, उसको दोबारा छील करके उसको फिर काट करके लिखने के काबिल बनाना पड़ता था, उसको कत बनाना कहते हैं इस्तेलाह में उर्दू ज़बान के अंदर। तो कत बनाने के लिए गोया दो दो तीन तीन सफ़े के बाद बार बार, तो जब उसका कत बनाने का वक्त आता था तो उस वक्त वो वक्त भी बेकार न जावे, तो वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। हालांकि उनका ये खत बनाना ये भी काय के लिए था, तालीफत। कुछ न पढ़ते तो भी ये अमल खुद एक जरिया है नेकी के काम का, इस माना करके क्या है उनके हक में नेकी का काम था, फिर भी उसको काफी नहीं समझा। मां अब्दुल्ला साहब काफत और भी दामद बरकात, हमने एक मरतबा वाकया सुनाया कि वो तशरीफ ले गए थे वहां बांदा, हजरत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। कहते हम पहुंचे तो पता चला कोई इमारत तामीर हो रही थी मदरसे की, वहां हजरत हैं। तो वहां हम जब पहुंचे तो देखा रेत के ढेर के ऊपर हजरत बैठे हुए और निगरानी कर रहे थे, और दो चार बच्चे थे जो हजरत को कुरान पाक सुना रहे थे। तो कहा हम मुलाकात किया था ना, फरमाया भाई मैं जरा जरूरत थी ये निगरानी करने की, तो मैंने सोचा कि निगरानी का काम तो आंख करेगी, कान अभी फुर्सत से है तो उससे भी फायदा उठा लें। ये हजरात थे जिन्होंने अपने वक्त की कदर कीमत समझी। ये हजरात अपने वक्त एक एक लम्हे को वसूल करने का एहतमाम करते थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल हय साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में गोया वक्त की कदर कीमत गोया अल्लाह ताला ने रचा बसा दी थी। हर वक्त घड़ी के ऊपर नजर रहती थी और अपने तमाम कामों को वक्त के ऊपर ऐसा तकसीम कर रखा था कि उसके मुताबिक उन कामों को अंजाम देते थे। एक लम्हा एक मिनट भी आपका फारिग, बल्कि एक जगह मैंने खुद वहां पढ़ा उनके उनके तहरीर के अंदर कि कोई आदमी अगर 15 साल पहले हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ था दिन के 10 बजे मिसाल के तौर पर, तो उस 15 साल पहले दिन के 10 बजे जो काम करते हुए हजरत को देखा था, 15 साल के बाद आएगा 10 बजे तो उसी काम को करते हुए हजरत को पाएगा। ये अपने निजामुल औकात और टाइम टेबल की इतनी पाबंदी, ये हमारे अकाबिर क्या इसका इतना बड़ा एहतमाम। देखो ये आजकल यूरोप अमेरिका वगैरह के अंदर एक मुस्तकिल टाइम मैनेजमेंट कोर्स बड़े बड़े उकला दानिशमंद तैयार करते हैं, जिसमें लोगों को ये सिखाया जाता है कि अपने वक्त को कारामत कामों में आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकायदा इस कोर्स में बड़े बड़े जो है ना ग्रेजुएट और जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लेक्चरार और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मैनेजर होते हैं वो बड़ी बड़ी रकमें अदा, फीस अदा करके इस कोर्स में हिस्सा लेते हैं, ताकि उनको पता, ताकि ये सीखें कि हम अपने वक्त को सही तरीके से इस तरह इस्तेमाल करें। हमारे अकाबिर को अल्लाह ताला ने ये चीज अपने बड़ों की सोहबत के नतीजे में नहीं अता फरमाई थी, वो अपने औकात का बड़ा एहतमाम। हजरत मौलाना आशिक इलाही साहब मेठी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हजरत मां खली अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कि अपने मामूलात और गोया अपने अमाल के इतने पाबंद थे कि कभी उसमें फर्क आता, हालात कुछ भी हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सफर में हो, हजर में हो, कोई मेहमान आया हो, कुछ हो, बहरहाल आप अपने अपने वक्त पर अपना काम अंजाम देते थे, उसमें जरा बराबर भी तखल्लुफ नहीं होता। ये बड़ा एहतमाम। हजरत शेख माना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आबीती के अंदर लिखा है अपना वाकया कि जिस जमाने में बजल जो है लिखी जा रही थी, तैयार हो रही थी, तो उसका छप्पा वहां थाना भवन में हजरत मौलाना शब्बीर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत की हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के नाजिम भी थे, हजरत के भतीजे भी होते हैं, आपके बड़े भाई अकबर अली रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, उनका प्रेस था, ज्यादातर तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ और ये चीजें उसमें छपती थी, तो बजल वहीं छपती थी। तो हजरत फरमाते हैं कि उसका प्रूफ देखने के लिए मुझे जाना पड़ता था हफ्ते में, तो वो प्रूफ जो है वो जोहर के वक्त हमें मिलता था और असर के वक्त देख करके उसको वापस लौटाना होता था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस का वक्त जोहर के बाद था, आम मजलिस का, सब बड़े बड़े लोग भी आते थे, उलमा आवाम सब। तो उस हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत की मजलिस की जो जगह थी सहदरी में, वहां हजरत तशरीफ फरमा होते थे और मैं मस्जिद के कोने में बैठकर प्रूफ जो है देखने में मशगूल होता था, वो पूरा वक्त उसी में गुजर जाता था। मुझे दिल में ये हसरत भी होती थी कि यहाँ थाना भवन में होते हुए और मेरे सामने हजरत की मजलिस हो रही है, फिर भी मैं इस प्रूफ के देखने की खिदमत की वजह से, काम की वजह से उसमें जो है शिरकत نہیں کر سکتا. تو ایک مرتبہ میں نے کہا, حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے گویا اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا, حضرت بڑا محروم قسمت ہوں کہ لوگ دور دور سے آپ کی مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں, لیکن میں جو ہے یہاں اس کام میں مشغولی کی وجہ سے آپ کی مجلس میں شرکت نہیں کر پاتا. تو حضرت نے فرمایا, مولوی صاحب بس بس فکر مت کرو, آپ میری مجلس میں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کی مجلس میں ہوتا. میں ہمیشہ میں لوگوں سے باتیں کرتا جاتا ہوں, کونے میں آپ جو کام کر رہے ہیں میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور رشک کرتا ہوں, اور دل میں یوں کہتا ہوں کہ کام تو اس طرح ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اپنی زندگی کے اوقات, تو آج ہم نے کیا فضول بحثوں میں اپنے آپ کو ایسا الجھا دیا. طلبا کا ایک مزاج کیا بن گیا, مسجد سے نکلیں گے باہر کھڑے رہیں گے, پانچ سات منٹ یہاں گزارے, پھر درسگاہ کے قریب پہنچے تو درسگاہ کے دروازے کے باہر پانچ سات منٹ, اگر کہیں کولر ہے پانی کا تو پانی پینے کے دوران پانچ سات منٹ, درسگاہ میں جانے کے بعد کتاب لے کر خالی بند کتاب رکھ کر کے تپائی پر رکھ کر کے پانچ سات منٹ, اس میں پھر کتاب کھولی جائے گی اور اب جو ہے تکرار شروع ہو رہا ہے. اس تکرار میں بھی ابھی پانچ سات منٹ ہوئے نہیں تھے کہ کوئی شریر کوئی ایسا شوشا چھوڑ دے گا کہ تکرار اپنی جگہ پر. ہنسنے کی چیز نہیں ہے, عبرت کی چیز ہے, عبرت کی چیز ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں اپنی زندگیوں کے اوقات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا وقت صحیح استعمال کرتے ہیں, کتنا برباد کر رہے ہیں. یہ سعادت آدمی کو اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح گزارنے کا گویا اللہ سلیقہ عطا فرما دیں, یہ احساس کہ میرا زندگی کا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے, یہ احساس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے, وہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے, ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو طالب علم بیعت ہونے کے لیے آئے بلخ سے, اور جہاں حضرت کا قیام تھا جس مسجد کے اندر, اب وہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے نہیں تھے, حضرت کی شہرت اور اس کی وجہ سے کیا ان جانتے نہیں کہ مرزا صاحب کون ہے. اب وہ آئے اور نماز کا وقت تھا, نماز سے پہلے حوض کے اوپر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں, وضو کے دوران اب حضرت مرزا صاحب وہیں قریب میں تھے, وہ پہچانتے نہیں تھے, اس لیے ان کو معلوم نہیں کہ کون ہے یہ. تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے وضو کرتے ہوئے, کہ ایک کہتا ہے کہ یہاں کا حوض ہماری بلخ کی مسجد کے حوض سے بڑا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہمارے بلخ والا حوض بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, بس اسی میں بحث ہو رہی ہے. اب خیر حضرت نے تو سن لی بات, اب حضرت اس کے بعد نماز کے بعد جب حضرت کی خدمت میں وہ حاضری کے وقت پر حاضر ہوئے اور درخواست کی بیعت کی, تو حضرت نے پوچھا وہ کیا ہوا, پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں. کون سا حوض بڑا ہے, یہ ہماری مسجد کا یا آپ کے بلخ کا؟ تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا دیکھو تمہاری اس بحث سے معلوم ہوا کہ تم میں دو خرابیاں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جانتے نہیں, فضول بحث. اگر یہ پتہ چل بھی جاتا کہ یہ حوض بڑا ہے وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, اس سے تمہارا آخرت کا کیا فائدہ ہوتا یا دنیا کا کیا فائدہ ہوتا, اپنے آپ کو فضول بحثوں میں لگایا, یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے. ایک بات, دوسرا یہ ہے کہ تم میں تحقیق نہیں ہے, بے احتیاطی بات کہ گویا غیر محتاط باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہو. ایک نے تو کیا تم دونوں میں سے ہر ایک نے ان دونوں حوضوں کو ناپا تھا؟ کسی نے ناپا نہیں, جس نے اس کو بڑا کہا اس کو چھوٹا کہا وہ بھی خالی ظن اور تخمین کی بنیاد پر, اور جس نے اس کو بڑا اور اس کو چھوٹا کہا وہ بھی ظن اور تخمین کی بنیاد پر, کوئی گویا ناپ کر کے نہیں کہا تھا, یہ بھی اہل ایمان کی شان نہیں ہے. پھر حضرت نے فرمایا جاؤ پہلے یہ حوض بھی ناپ لو اور وہاں جا کر کے وہ حوض ناپ, اس کے بعد میں بیعت کروں گا. حضرت نے کوئی ایک ان کو سبق دینا چاہا تھا. یہ حقیقت یہ کہ آج ایسی فضول بحثیں ہمارے اندر عام ہو گئی, یہ سیاسی بحثیں, مودی حکومت پر آیا ہے, بھاجپا کی حکومت ہے, بس چل رہی ہے, घंटों से ले गया, चल इन बसों से क्या फायदा हुआ, ये जो दुनिया के अंदर हालात है, ये घर वापसी का प्रोग्राम, इस पर बसें चलेगी। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं ठीक है इनकी बहसें, अब इन बहसों से जो लोग इन हालात से गुजर रहे हैं उनको क्या फायदा पहुंचा। ये बहसें करने वाले घंटा घंटा बहस करते हैं, लेकिन इनमें से किसी को ये तौफीक होती है एक मिनट के लिए दुआ के लिए हाथ उठाकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इन मुसीबतों से नजात दे, नहीं ये नहीं। इन बहसों से उनको क्या फायदा पहुंचा और हमें क्या फायदा पहुंचा, कुछ नहीं। बस ये वक्त जाया करने का एक तरीका है, हमारे एक मिजाज में ये सारी चीजें रच बस गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं मिन हुस्ने इस्लाम मरे तरकुहु वला यानी, वह इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक आदमी की दीनदारी के लिए गोया ये जरूरी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने बेटे हम्माद को हदीस के खुलासे के तौर पर जो पांच रिवायतें बताई, चार तो वो जो इमाम अबू दाऊद ही ने बताई है, पांचवी जो है वो अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमोन मिन लिसानी व यदिही। तो बहरहाल ये आज जो हमारे मिजाज के अंदर अपने औकात को जाया करना, ला यानी की मशगूलियत ये बहुत बड़ा अजाब है आज इस उम्मत के ऊपर, और खास करके हम खवास उम्मत अहले इल्म जिनको आगे जाकर के उम्मत की रहनुमाई और हिदायत का फरीजा अंजाम देना है, हमें तो चाहिए कि अपनी जिंदगी के एक एक वक्त को जो है एक एक मिनट को गोया तोल तोल करके और समझ समझ करके और गोया खूब सोच सोच करके इस्तेमाल करने का अहतमाम करें ताकि वो जाया और बर्बाद न हो। ये असल हजरत अतानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज ही के अंदर वाकया लिखा है। एक मरतबा हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे सिलसिले के बड़े मशाइख में हमारे सिलसिले में वो भी हैं, आते हैं नाम उनका भी है, एक मरतबा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है उनकी मुलाकात के लिए आए, वो अपनी तस्बीह पढ़ रहे थे, उन्होंने आके मुलाकात की और बस इन्होंने भी मुसाफा कर लिया और फिर अपने तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गया। अब हजरत खिजर बैठे हैं और ये अपनी तस्बीह पढ़ने में मशगूल है, हजरत खिजर सोच रहे हैं कि ये तो अजीब आदमी है, लोग तो बरसों मेरी मुलाकात की तमन्नाएं करते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी उनको गोया ये मेरी मुलाकात नसीब नहीं होती, और यहाँ मैं खुद मिलने के लिए आया हूँ तो अभी ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हजरत खिजर समझे शायद न पहचाना हो, कहा आपने मुझे पहचान, कहाँ पहचाना, खिजर है देखा लोग तो मेरी मुलाकात की तमन्नाएं करते हैं और मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ तो जो है वो आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं, कभी आपकी तरफ तवज्जो आपकी मुलाकात की तमन्ना वो करे जिसको अल्लाह से फुर्सत हो, मुझे तो अल्लाह से फुर्सत है नहीं कि तुम्हारी तरफ ध्यान दूँ। तो ये है एक आदमी का मिजाज ये होना चाहिए अपने काम में, समझाया गया, अपने औकात के अंदर दूसरे किसी चीज़ को वो बर्दाश्त न करे। अभी कल ही एक मजमून पढ़ा था मौलाना वली रहमानी का, उसमें अलफुरकान के अंदर कि उसमें वो हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक, जो मौलाना अब्दुर्रज़्ज़ाक मलिहाबादी हजरत के ख़ास पर्सनल सेक्रेटरी थे, वहाँ कलकत्ता एक मरतबा गांधी जी हजरत से मिलना के लिए आए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने आके इत्तला दी मौलाना अब्दुर्रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने कि गांधी जी मिलने के लिए आए हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा उनको बता दो कि ये तो मेरे मुताले का वक्त है। उन्होंने कहा गांधी जी आगे, गांधी जी हो के कोई भी हो मेरा मुलाकात का वक्त, ये मेरा मुताले का वक्त। देखो गोया एक आदमी अपने निज़ामुल औक़ात का कितना ज़्यादा पाबंद, जो लोग अपने आप को अपने निज़ामुल औक़ात का पाबंद बनाते हैं वही दुनिया में कुछ कारनामा अंजाम दे सकते हैं। हजरत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुम के मुतालिक सुना कि वो घर से मस्जिद जाते हैं या कार में बैठकर, तो उस वक्त भी ये जो उन्होंने एक मजामीन का सिलसिला जंग अखबार के अंदर शुरू किया था तो उसके लिए वक्त तो नहीं था, अखबार वालों ने बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा मैं मस्जिद घर से मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए कार में बैठ कर के जाता हूँ, तो उस वक्त गोया थोड़ा थोड़ा करके लिखता रहूँगा, जो मजमून तैयार होगा वो तुम्हें को दूंगा। तो इतना वक्त को भी वो ज़ाय करने के लिए तैयार नहीं। आज जब उनका सफ़र हुआ था, जिन लोगों ने उनके साथ सफ़र किया वो बतलाते हैं कि ट्रेन में हो कहीं भी हो वो हमेशा अपने काम में मशगूल रहते थे। जब आदमी इस तरह रहता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरत है, यह हम अपनी सलाहियतों को ज़ाय करते हैं। ये हमारा वक्त जो है ना बड़ा कीमती है। एक आदमी जो है रुपयों पैसों से जवाहरात खरीदने के बजाय पत्थर खरीदे, भाई पत्थर से कोई नुकसान तो नहीं है लेकिन बड़ा फायदा भी तो नहीं है, बल्कि एक एतबार से देखा जाए तो इतने कीमती सरमाए को पत्थर के अंदर उसने लगा करके क्या कर दिया, जाया ही किया यूं कहा जा सकता है। भले यूं कोई कहे कि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो क्यों नहीं हुआ, जो फायदा उठा सकते थे वो फायदा खत्म हो गया आपने पत्थर खरीदे तो हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी के ये कीमती औकात अता फरमाए, ये सलाहियतें अता फरमाए। मैं तो मिसाल दिया करता हूं कि भाई देखो एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का एक टुकड़ा है तो ये वक्त ये लोहे का टुकड़ा जो है ना वो खाम माल है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो होता है ना उस रॉ मटेरियल से आप जो चीज बनाएंगे उसके मुताबिक उस खाम माल की कीमत लगती है। आप जिस काम में इस्तेमाल करेंगे, ऊंचे चीज में इस्तेमाल करेंगे तो उसी के मुताबिक ये कीमती समझा जाएगा। जैसे लोहे के एक टुकड़े को आपने साइकिल का कोई पार्ट बनाने में इस्तेमाल किया तो अब उसकी कीमत साइकिल की जो कीमत है 2,500-3,000 उसके मुताबिक उसकी कीमत लगेगी। और उसी टुकड़े को अगर आपने बाइक का ऐसा ही कोई छोटा पार्ट बनाने में इस्तेमाल किया तो अब इसकी कीमत, बाइक की कीमत 60,000 है, लाख है, 1.5 लाख है, तो इसके हिसाब से इसकी कीमत बढ़ गई। और इसी लोहे के टुकड़े को अगर आपने कार का उसी तरह का कोई छोटा पार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो उसके मुताबिक उसकी कीमत बढ़ेगी। उसको हवाई जहाज का कोई पार्ट बनाने की तो यह तो ये वक्त हमारा खाम माल है, रॉ मटेरियल है। और मैं तो कहता हूं खाली वक्त ही नहीं, उस वक्त के साथ हम अपनी दूसरी सलाहियतों को भी तो जाया कर रहे हैं, दिमाग को, दिल को, आंख को, जबान को, ये सारी सलाहियतें सब रॉ मटेरियल है, सब क्या है, खाम माल है। वक्त भी खाम माल है और ये सारे कुवा और सलाहियतें भी खाम माल हैं। अब अगर हम फजूल बहसों में अपने आप को मशगूल करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि गोया हम अपनी बहुत सारी कीमती सरमाए को क्या कर रहे हैं, जाया और बर्बाद कर रहे हैं। इससे बड़ी हिमाकत और क्या हो सकती है। हकीकत तो यह है शेख अबुल कासिम जो इमाम अबू सौद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और हजरत सिर्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं, उनका मकूला नकल किया गालिबन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि अलामत एराज़िल्लाह अनिल अब्द अन युशगिलहु फी मा ला यानी, कि अल्लाह ताला के अपने किसी बंदे से नाराज और बेपरवाह होने की अलामत यह है कि उसको लायानी में क्या कर दे, मशगूल। कोई आदमी लायानी में मशगूल है तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला उससे नाराज है कि उसकी सलाहियतों को ये जाया कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये हम सबसे, मैं अर्ज करूंगा, तलबा हैं, अहले इल्म हैं, हर एक को अल्लाह ताला ने सलाहियतें अता फरमाई हैं, अपनी जिंदगी के इन औकात को कीमती समझ करके उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का एहतमाम किया जाए। असातिज़ा को भी चाहिए कि अपनी सलाहियतों को अल्लाह ने जो अता फरमाई है उसके मुताबिक तलबा पर मेहनत करें, अपनी तारीफ व तसनीफ दूसरे कामों में लगाएं और जितना ज्यादा जितने ज्यादा कीमती और अहम काम में उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही गोया अपने इस सरमाए की आप कीमत वसूल कर सकते हैं। ज़रूरत है कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए। आज जब सबसे बड़ा सरमाया उम्मत का जो ज़ाया और बर्बाद हो रहा है वो यही है, और ख़ास करके इस तरह खेलों में और इस तरह की फजूल बहसों में, फजूल कामों में हमने अपने आप को ऐसा लगा दिया कि हमें उसका एहसास भी नहीं है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी की इस कीमत को सही तरीके से वसूल करना हमारे लिए आसान करना। रोज़ाना दुआ किया करो, सुबह को फजर के बाद ये दुआ करो कि अल्लाह एक ज़िंदगी में एक दिन और तूने अता फरमाया, इस पूरे दिन को जो है जो मुफीद और कारामत कामों में इस्तेमाल करने की मुझे तौफीक अता फरमा, इस दिन में हर किस्म की मासियत और गफलत से मेरी हिफाजत फरमा, तेरे अवामिर की बजावरी और तेरे नवाही से इज्तनाब को मेरे लिए आसान फरमा। ये दुआ भी करो और फिर हर वक्त जो है इसका एहतमाम भी होना चाहिए, निगरानी रखो अपने ऊपर कि भाई मैं अपने अवकात को कहाँ इस्तेमाल, खुद ही गोया अपना हिसाब लो, हासिबू कबलान तो हासबू, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकूला है कि कल को क़यामत में अल्लाह के यहाँ तुम्हारा हिसाब लिया जाए उससे पहले तुम खुद ही अपना हिसाब, दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी को हिसाब देना होता है तो वो खुद पहले अपना हिसाब, कंडक्टर को देखा होगा या टिकट काटने के बाद खुद ही क्या करता है, हिसाब क्यों करता है, जैसे कि शाम को उसको हिसाब देना है तो वो गया उसकी तैयारी करता है। हमें भी अल्लाह को हिसाब देना है अपनी जिंदगी के औकात का, अपनी जिंदगी की सलाहियतों का, अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई है उसका। इसलिए गोया हम खुद ही अपना मुहासबा करें और मुहासबा करके कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके अंदर इस्लाह की ज़रूरत हो तो उसको ठीक करके सही इस्तेमाल करने का अहतमाम करें। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए।